धवला पुस्तक तेरवी लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोरे सवसाहूणं मुनि सुवय जिनवसहं सुवय मुनि वसह संतु अम्नमिहु कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थगन्थगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसके कर्म अनुयोग द्वार को देखते हुए भी हम पृष्ठ संख्या 135 पर आ गए, 135। अभी तक तो हमने मार्गणाओं में और ओघ में काल देखा था, ये छह कर्मों का, अब उसका अंतर देखना है। तो अंतर में वो छुटकर वापस फिर वो नहीं रहे और फिर वापस आ जाए, उसकी बात है। तो यहाँ तो ओघ में पहले हमने देखा था प्रयोग कर्म और समवदान का कभी अंतर नहीं होगा, ना एक जीव की अपेक्षा ना नाना जीवों की अपेक्षा। ये पेज नंबर 132 से हमने देखना शुरू किया था। अधक कर्म का अंतर कितना है तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है बताया था, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर काल एक समय, यानी वो नौकर्म स्कंध निर्जीर्ण हुआ, वो उसका औदारिक भाव जो एक समय के लिए रहा, बाद में एक समय के लिए नहीं रहा, फिर वापस उसको ग्रहण किया, औदारिक रूप से परिणत हो जाते, यानी अधक कर्म में वो ग्रहण किए हुए उसके सत्ता में है और निर्जीर्ण होकर बाहर पड़े, उस सबको अधक कर्म कहते हैं। और उत्कृष्ट अनंत काल है अंतर का, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन वाला है। अब उसकी बात उन्होंने समझाई थी किस तरह से होता है। उसके बाद क्रिया कर्म का अंतर कितना हो सकता है, हाँ एक जीव की अपेक्षा कितना होगा। हाँ देखो, अंतर्मूर्त कब होगा, क्रियाकर्म यानी समय दृष्टि वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, एक अंतर्मूर्त वापस आएगा, वो क्रियाकर्म का अंतर होगा, वो भी मैक्सिमम अर्ध पुद्गल पर आता और मिनिमम एक अंतर्मूर्त। उसके बाद इरियापथ का अंतर, इरियापथ का जघन्य अंतर कितना होगा, बोलो अंतर्मूर्त। उपशम श्रेणी उतर कर फिर चढ़ा, अंतर्मूर्त होगा। और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन। तप कर्म का भी अंतर कैसा होगा, मिनिमम अंतर, संयमी जीव नीचे के गुणस्थानों में आया, असंयमी हुआ और फिर वापस संयम प्राप्त किया, वो अंतर्मूर्त, उसका मिनिमम अंतर, और मैक्सिमम अंतर वही अर्धपुद्गल परावर्तन। अभी हमको मार्गणाओं में देखना है। अब नरक गति में हम देख रहे थे, एक जीव की अपेक्षा वो प्रयोग कर्म और समवदान का अंतर तो होता ही नहीं, ओग में भी नहीं होता तो मार्गणा में भी नहीं होगा। क्रिया कर्म का अंतर कितना है तो नाना जीवों की अपेक्षा तो निरंतर है, और एक जीव की अपेक्षा क्या समझना, यानी उसने सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में गया और वापस सम्यक दृष्टि हुआ, एक अंतर्मूर्त मिनिमम अंतर होगा, जघन्य अंतर। और उत्कृष्ट अंतर
कुछ कम करके,
हाँ सातवें नरक में वहाँ अंतर्मूर्त के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में गया और फिर लगातार मिथ्यात्व में रहा, अंत में जाके उसने पहले आयु बांधी मिथ्यात्व में, फिर औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में चला, तब उसका वो अंतर चालू हो गया, या औपशमिक करके साथ साधन में आया चावली पहले, वो भी हो सकते उसका, यानी वो प्राप्त करते ही अंतर समाप्त हो, वो कई साथ साथ उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सर हमने कुछ कम 33 सागर देखा था। तीन ही होते ना नारकियों में, प्रयोग, समवदान और क्रियाकर्म। अब यहां से अपना विषय शुरू होता है तिर्यंच गति में। तिर्यंचों में प्रयोग कर्म और समवदान, यहाँ पहली बार समवदान बराबर लिखा मूल सूत्र में बराबर लिखा था, फिर अभी बराबर लिख रहे। नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। अधक कर्म और क्रिया कर्म का अंतरकाल ओघ के समान है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना देखा था? एक समय और असंख्यात पुद्गल बराबर था। और क्रिया कर्म का अंतर एक अंतर्मूर से अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसका अर्थ समझ लें, पहली बार भी तिर्यंचों में सम्यक तो प्राप्त किया है और लगातार तिर्यंच में रहा है, ये महत्व की बात है। यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच ने प्राप्त किया, फिर वो एक इंद्रिय आदि में चला गया और इतने काल तक रहा, फिर वापस जब वो तिर्यंच में ही उसने सम्यक तिर्यंच होकर सम्यक तो प्राप्त किया है, फिर बाद में मरकर मनुष्यों में जाकर संयमी होकर वो मुख जाएगा, वो काल उसमें से माइनस करना है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, कुछ कम में सब आ गए वो। यानी पहली बार भी औपशमिक उसने तिर्यंच में किया था और अंत में भी उसने औपशमिक तिर्यंच में ही किया है। तो कहते ओक के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, यानी वो छोड़े हुए फिर दोबारा उसको उसका औदारिक परिणाम नष्ट होकर फिर वापस वो ग्रहण होना चाहिए। तो हमें ये पंचेंद्रियों की स्थिति मालूम होनी चाहिए पंचेंद्रिय त्रिक कहने से। तो कहते हैं कि एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम, ये पहले वाले तीन समय कम करना और 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य प्रमाण है। यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच का ये उत्कृष्ट काल है, क्योंकि कोई एक देव, नारकी या मनुष्य पूर्वकोटि प्रमाण आयु वाले संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, वहां उसने उपपाद योग के द्वारा, यानी पहला समय पूर्वकोटि प्रमाण आयु के प्रथम समय में औदारिक शरीर के निमित्त जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, उनकी दूसरे समय में निर्जरा होकर, पहले समय में ग्रहण किया, दूसरे समय में निर्जरा हुए, तीसरे समय में वे औदारिक भाव से रहित तो हो गए। यानी ये दो समय, पहले दो समय, तीसरे समय में तो रहित हो गए, इसलिए इनके अंतर की आदि हुए, अंतर शुरू हुआ। फिर वहां से लेकर 95 पूर्वकोटि प्रमाण काल का और तीन समय कम तीन पल्य प्रमाण काल का अंतर देकर अंतिम समय में पूर्व निर्जीर्ण उन्हीं पुद्गल परमाणुओं के औदारिक शरीर के निमित्त प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल निकल आता है।
क्या वापस पे ये तीन समय कम तीन पल्य क्यों लिया?
वो पहले वाले दो समय और जब उसने ग्रहण किया वो समय छोड़ देना है।
हाँ, बराबर,
पहले दो समय और वो तीन समय, वो उसमें किसमें से कम किए? उन्होंने तीन पल्य में से कम किए, पूर्व कोटि पृथक्त्व में से कम नहीं किए। टोटल उसकी फिगर आनी चाहिए,
कम करना चाहिए।
टोटल तीन समय कम करना है। ऊपर क्या लिखा था? तीन समय कम 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य। तो यहाँ 95 पूर्व कोटि ले लिए, 95 पूर्व कोटि प्रमाण काल का और तीन समय कम तीन पल्य प्रमाण काल का। अब ये 95 में से तीन समय माइनस करो, या वैसे देखा जाए तो पहले दो समय लेना और लास्ट का एक समय, क्योंकि ग्रहण किया हुआ वो समय छोड़ देना ना, उसके पहले तक अंतर था। यानी पहले दो समय और लास्ट का एक समय, टोटल तीन समय माइनस करने हैं। वो तीन पल्ले में से करो या 95 पूर्व मोटे में से करो, बात एक ही है। समझ में आई बात? इनका अंतर देकर अंतिम समय में पूर्व निर्जीर्ण उन्हीं पुद्गल परमाणुओं के औदारिक शरीर के निमित्त प्राप्त होने पर अधक कर्म का अंतरकाल निकल आता है। यानी वो होना ही चाहिए ऐसे नहीं, हमको उनमें मैक्सिमम अंतर घटित करना है इसलिए उन्होंने ग्रहण किया ऐसा कहेंगे। इस प्रकार तीन समय कम अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, वह निरंतर है। यह तो समझ में आवे ऐसी बात। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अब किसमें देख रहे हम? पंचेंद्रिय तिर्यंच में। तिर्यंचों में तो देख चुके, वहां तो अर्धपुद्गल परावर्तन देखा। अब पंचेंद्रिय की अपनी अपनी स्थिति प्रमाण लेना। शुरुआत में एक बार समय तो प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गए और अंत में यानी वो स्थिति के अंत में फिर दोबारा किया। तो एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्य। ये कथन तीनों के लिए लागू हो गए। किसके लिए? सामान्य यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंच तिर्यंच पर्याप्त और योनिमति के लिए। ख्याल में है ना? हाँ, ये जो है पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे तो 95 पूर्व कोटि, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहेंगे तो कितने हो गए बोलो?
47। सॉरी,
कैसे? क्योंकि अपर्याप्तों को नहीं लेना है, संगी और असंगी के पर्याप्तों के भव लेना है। तो असंगी के कितने हो गए? 8 अधिक 24 और संगी के 24, टोटल 48। उसमें से एक तीन पल्ले का लेना, 47। देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच 95 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त 47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी योनिमति। अभी संगी असंगी दोनों के स्त्रीवेदी लेने तो 8 और 8 16 हो गए, तो 15 और तीन पल्य 24 कहा से?
संगी और असंगी के, अच्छा
केवल स्त्री पर्याय के लेना, 8-8 ही लेना। आगे बढ़े? हाँ, इसलिए उसको कॉमनली पूर्वकोटि पृथक्त्व कह दिया, क्योंकि 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक मनुष्य मनुष्यों को लिया और वो भी तिर्यंचों में अर्लीस्ट सम्यक तो प्राप्त करना है ना, इसलिए सम्मूर्छन बनाएंगे। तो मनुष्यों में से क्यों लाया? देवनारकी में से क्यों नहीं लाया? वो सम्मूर्छनों में उत्पन्न नहीं होते, इसलिए मनुष्यों में वो सम्मूर्छन तिर्यंच बना, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन तिर्यंच। तो कहते एक मनुष्य संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर, और वो भी कौन सा लिया जीव? सादी सादी मिथ्यादृष्टि, 28 की सत्ता वाला, क्योंकि वो सम्मूर्छन तो अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा, और गर्भज होता तो गर्भज काल और फिर बाद में कुछ हाँ, तो उत्पन्न होकर 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम करके और विशुद्ध होकर, क्योंकि विशुद्धि बढ़कर फिर सम्यक्त होगा, वेदक वो कर है गया, वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्रिया कर्म का आदि दिखाई दिया, फिर सबसे अल्प अंतर्मूर्त काल तक रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और क्रिया कर्म का अंतर किया। ये सासादन में जाएगा कि वेदक समय दृष्टि वेदक समय देखो मनुष्य से गया, क्योंकि सम्मूर्छनों में देव नारकी उत्पन्न नहीं होते, वो गर्भजों में जाते। देव और नारकी पंचेंद्रिय, अभी एक इंद्रिय तो सम्मूर्छन ही है, सम्मूर्छन इसलिए लिया कि वो जल्दी सम्यक तो प्राप्त कर सकते अंतर्मूर्त में, और गर्भज जीवों को टाइम लगता है क्योंकि वो तो गर्भ का काल और फिर पृथक तो कुछ पृथक तो मुहूर्त पृथक तो मास ऐसा आता है, 2 महीना मिनिमम गर्भ काल इतना तो रहेगा ही रहेगा, पृथक तो मास कहते हैं उसको। यानी सम्मूर्छन और वो भी सादी मिथ्या दृष्टि है, उसको अंतर्मूर्त में पर्याप्ति के बाद, पर्याप्त का अंतर्मूर्त, विश्राम का अंतर्मूर्त, मनुष्यों में से वहां उत्पन्न हुआ है, मनुष्य मरकर संगी पंचेन्द्रिय समूर्छन तिरियंचों में उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी मार्गणा तिरियंच की है। यानी कहना फिर से 28 की सत्ता वाला कोई एक मनुष्य संगी पंचेन्द्रिय समूर्छन पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर, यानी वो तिरियंच तिरियंचों की बात चल रही है। आगे बढ़े तो अंतर्मूर्त रहकर, हाँ मैंने ये पूछा ये साधन में भेजना क्या जल्दी जाए, चला जाएगा मिथ्या तो मैं
जल्दी,
आप क्या कहते हैं
क्रियाकर्म का अंत
भेजना कि नहीं भेजना औपशमिक सम्यक। देखो साधन में कौन जाता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि साधन में जा सकते, औपशमिक के काल में उसकी कंडीशन ही है, ये वैदिक समय दृष्टि है। हाँ हाँ नहीं जाते, रीजन ये है क्यों नहीं जाता, क्योंकि साधन में जाने वाला औपशमिक सम्यक तो में से ही जाता है, क्योंकि औपशमिक सम्यक तो का काल चालू है, तब पोजीशन क्या है, किसकी दर्शन होने की क्या पोजीशन है, वो अंतर्मूर्त के ऊपर पड़ा है और उपशमित है, तो उपशमित है तो जब साधन सम्यक तो प्राप्त होता है तो क्यों होता है, अनंतानुबंधी का उदय हो जाए, पर अनंतानुबंधी की पोजीशन क्या है, वो एक समय ऊपर पड़ा है, उदय के एक समय ऊपर पड़ा है और उदय में आते आते वो अप्रत्याख्यानादि होकर हो आ रहे, तो जीव के परिणाम बिगड़ जाए तो अनंतानुबंधी का तो उदय हुआ, परंतु मिथ्या तो अंतर्मूर्त तक तो उपशमित है, यानी कैसा हुआ, अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक तो छूट गया पर अभी मिथ्या तो में गया नहीं है, तो ये बीच वाली अवस्था है वो साधन की। अब वेदक सम्यक तो में उसकी बात नहीं, वो साधन में क्यों नहीं होता वो उसकी बात चल रही, अभी वेदक सम्यक तो में क्या पोजीशन है, वहां पर उदय चल रहा है सम्यक प्रकृति का, और मिथ्या तो ऊपर दूसरे निषेक में पड़ा है, जैसे अनंतानुबंधी दूसरे निषेक में पड़ा था और उदय अप्रत्याख्यानादि रूप से होता था, ऐसे मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो दूसरे समय में पड़ा है और उदय सम्यक प्रकृति रूप से हो रहा है, तो परिणाम बिगड़ जाए तो मिथ्या तो का भी उदय और अनंतानुबंधी का उदय एट ए टाइम होगा, इसलिए वेदक सम्यक तो में साधन नहीं हो सकता। मिथ्या तो हाँ वेदक सम्यक दृष्टि तो मिथ्या तो में जाएगा, तीसरे में नहीं जाता, तीसरे में जा सकता है, मुझे कहना दूसरे में नहीं जाता, साधन में नहीं जाता। अभी आगे बढ़े, यहाँ क्या कहते हैं कि अंतर्मूर्त उसको रहकर, अभी वो सादे मिथ्या दृष्टि था, वेदक सम्यक तो प्राप्त करके वो मिथ्या तो में चला गया अंतर्मूर्त में, और क्रियाक्रम का अंतर किया, फिर वहां संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त स्त्रीवेदी, संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पुरुषवेदी और संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त नपुसक वेदी अवस्था में 8-8 पूर्व कोटि काल तक जीवित रहा, यानी संगी पंचेन्द्रियों में स्त्रीवेदी पुरुषवेदी नपुसक वेदी के 8-8 भव 24 हो गए, पुनः असंगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त स्त्रीवेदी पुरुषवेदी और नपुसक वेदी जीवों में 8-8 पूर्व कोटि काल तक जीवित रहा, वो मैक्सिमम इतने ही हो सकते बहु उसके, इसलिए फिर संगी और असंगी पंचेन्द्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों में 8-8 अंतर्मूर्त काल तक जीवित रहा। देखो यहाँ एक अंतर्मूर्त नहीं, 8-8 अंतर्मूर्त पूरे लिए हैं, हाँ
लगातार
हाँ बढ़ाना है ना, वैसे भी मनुष्यों में हम बीच में अपर्याप्त का भव लेते हैं, वहां पर भी 8 भव ले सकते हैं। फिर असंगी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में पहले असंगी को लिया, क्योंकि भोग भूमि में भेजना है तो असंगी में से नहीं भेज सकते, वो संगी होकर जाएगा, तो असंगी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुसक वेद के साथ 8-8 पूर्वकोटि प्रमाण काल तक जीवित रहा, फिर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में पुरुषवेद नपुसक वेद और स्त्रीवेद के साथ क्रम से 8-8 और 7 पूर्वकोटि काल तक जीवित रहा, अंत में 7 रखना क्योंकि उसके बाद उसको भोग भूमि में भेजेंगे, फिर देवगुरु और उत्तर गुरु के तिरियंचों में उत्पन्न हुआ, वहां 3 पल्ले में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, उपशम सम्यक का जो जघन्य उत्कृष्ट जो काल है उसमें से वो जघन्य काल उसके प्राप्त होने के योग्य बाकी रखकर वहां उसमें उत्पन्न हुआ। इस तरह क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है, वो तो उत्तम भोग में। देखो मेरु पर्व के दोनों ओर है ना, उत्तर की तरफ है उसको उत्तर कुरु कहते हैं और दक्षिण की तरफ है उसको देव कुरु कहते हैं। दक्षिण कुरु नहीं कहते, देव कुरु कहते हैं।
तीन पल्ले की आयु वहाँ पे होगी ना उत्तम भोग,
वहाँ उत्तम भोग भूमि में तीन पल्ले की आयु होती है। फिर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त होकर मरा और देह हो गया, क्योंकि इतना ही काल शेष रहा कि औपशम सम्यक का मिनिमम काल रखना। वो छह आवली पहले ही सासाधन में गया और मरकर देह हो गया। अगर पूरा उपशम सम्यक तो होता तो क्या होता, एक तो काल बढ़ जाता है और सम्यक तो में से कोई मिथ्या तो में आता है तो एक दो समय में मर नहीं सकता, अंतर्मूर्त जाना ही चाहिए, भले वो वेदक समय दृष्टि भी क्यों ना हो। वेदक सम्यक तो से भी चौथे से अगर वो तो पहले में आ गया तो इमीडिएट मरण नहीं होता, अंतर्मूर्त चला जाता है बीच में। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है इसलिए मालूम है, ऐसा कहीं यहां नहीं आता है परंतु बहुत जगह आया हुआ है। इसलिए वो उपशम सम्यक्त्व का काल घटाने के लिए वो उपशम सम्यक्त्व के योग्य काल में तो वहां तो उसने प्राप्त किया तो अंतर समाप्त हुआ और सासाधन के साथ देव में गया। इस प्रकार क्रिया कर्म का पांच अंतर्मूर्त कम, ये पांच अंतर्मूर्त कैसे लिए? देखो पहले में पहले उसने समूर्छन में उत्पन्न हुआ पर्याप्त हुआ वो एक अंतर्मूर्त, विश्राम लिया दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्ध हुआ तीसरा अंतर्मूर्त, फिर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ तो तीन अंतर्मूर्त तब हो गए। अब लास्ट में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते ही उसका अंतर समाप्त हुआ तो उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त भी गिनना है। और फिर पांच अंतर्मूर्त लिए ना उन्होंने,
अंत में दो लिया और पहले तीन,
नहीं नहीं चार प्लस एक लिया। देखो देखो अंतर कब, अंतर कब कहलाएगा?
पहले चार अंतर वो एक का पर्याप्त का,
पहले चार और लास्ट में एक,
एक पर्याप्त का,
पर्याप्ति
का,
विश्राम का,
और तीसरा
विशुद्धि का, विशुद्धि का, और सम्यक्त्व का अंतर कब होगा? जब सम्यक्त्व छूटेगा तो सम्यक्त्व में भी अंतर्मूर्त रहा ना, तो चार अंतर्मूर्त और लास्ट में एक अंतर्मूर्त। देखो पर्याप्ति हुआ, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर वेदक सम्यक्त में भी अंतर्मूर्त रहा ना। अंतर कब चालू हो जाएगा? जब मिथ्यात्व में आएगा तब। इसलिए पहले चार अंतर्मूर्त और अंत में जो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होते ही उसका अंतर समाप्त हुआ, बाद में वो उपशम सम्यक्त्व में रहा अंतर्मूर्त तक, इसलिए टोटल चार प्लस एक पांच अंतर्मूर्त कम 95 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। अब पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, वो तीर्यंच शब्द दो बार छपा है, और पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी जीवों में भी अंतरकाल इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी प्रकार नहीं, वो पांच अंतर्मूर्त कहेंगे परंतु उसके जो पूर्व कोटि पृथकत्व का प्रमाण अलग अलग है। इसी प्रकार कथन क्या होगा? पांच अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि पृथकत्व, उनके पूर्व कोटिया कितने गिनने हो तो हमने देख लिया है।
भोग भूमि में नपुंसक वेद नहीं होता है ना?
नहीं होता।
तो यहाँ पे 15 कोटि पूर्व और तीन पल्ले के लिए
क्या क्या क्या
आप नपुंसक वेद के लिए उन्होंने
की बात कर रहे हैं?
आप कहाँ की बात पढ़ रहे हैं?
आगे जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे
हैं। नहीं हाँ हाँ
तो वो अभी नीचे इधर चल रहे हैं की बात बात
कर रहे हैं। आगे पढ़ लिया उसका,
आगे पढ़ ली जाते हाँ, यही गड़बड़ी है। जो विषय चल रहा है ना आपके प्रश्न भी फिर उस पर आते हैं, क्योंकि आप हम स्लोली तो जाना है, सबको समझना है ना। देखो क्या कहते हैं, इतनी विशेषता है कि इनमें अधकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से तीन समय कम 47 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले प्रमाण, ये पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए। और तीन समय पहले हमने देखे थे ना अधक कर्म के, तीन समय क्यों कम कर दिए थे, तीन समय कम 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले प्रमाण, वो पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी के लिए होता है, तथा क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 5 अंतर्मुहूर्त कम, हमने देखा था ना सामान्य तीर्यंचों में 5 अंतर्मुहूर्त कम 95 पूर्व कोटि लिए और तीन पल्ले, तो यहाँ 5 अंतर्मुहूर्त कम 47, वो सही बराबर करो 47 म हुआ है, पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य और मुहूर्त पृथक्त्व अधिक 2 माह कम 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्य होता है। देखो क्या कहना चाहते हैं, जब हमने सामान्य तीर्यंच कहा तो सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न किया था और अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त कराया था, पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्तों में भी वही बात थी, पर्याप्त कहने से नपुसक वेदी और पुरुष वेदी दोनों को लेना है और स्त्री वेदी तीनों को ही लेना है, उसमें तो तीनों को लेना है, तो इसमें तो होते हैं ना, पर पर्याप्त कहने से नपुसक वेद को लिया पहले और लास्ट में स्त्री वेदी पुरुष वेदी रखा, ख्याल में है ना। देखो वहां जो नहीं नहीं वो नपुसक वेदी जा सकता है, वो जा सकता है, परंतु सम्मूर्छन में उत्पन्न हुआ ना उसकी बात है, वो नपुसक वेदी, इसलिए पहले पहले 8 पूर्व कोटि नपुसक वेदी के लिए, फिर स्त्री वेदी पुरुष वेदी वगैरह लेना, असंगी की भी ली हमने बीच में, संगी की फिर दोबारा भी अपर्याप्त के बाद भी ली। तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी स्त्री मत यानी योनिनी की बात है, योनिनियों के कितने भोगे संगी और असंगी के 8-8 यानी 15 हो गए, पर योनिनी है वो तो सम्मूर्छन नहीं हो सकते, तो उसमें पहला तीन ही अंतर्मुहूर्त कम किए थे, 4 अंतर्मुहूर्त और लास्ट वाला अंतर्मुहूर्त, यानी 5 अंतर्मुहूर्त के बाद किसमें हो लागू होगी, सामान्य तीर्यंचों में यानी पंचेंद्रिय पर्याप्तों में, तीर्यंच पर्याप्तों सामान्य पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में लागू होगी, स्त्री वेदी में तो गर्भज है इसलिए क्या कहा देखो, तो यहाँ कहते हैं कि मुहूर्त पृथक्त्व अधिक 2 माह, यानी 2 मास ये गर्भ का काल और मुहूर्त पृथक्त्व, कुछ मुहूर्त यानी कुछ दिन को भी मुहूर्तों में गिनेंगे हम, उसको पृथक्त्व मुहूर्त कह सकते हम, 2 महीने गर्भ के और कुछ दिन उसके बाद उसके हो गया, इसलिए मुहूर्त पृथक्त्व में वो आ गया, ये कम करना किसमें से 15 पूर्व कोटि अधिक तीन पल्ले होता है, ये सम्मूर्छन में उत्पन्न नहीं करना है इसलिए ये बात है,
ये गर्भ के पश्चात तो 15 दिन के पश्चात वो प्राप्त करता है समय को,
15 दिन कहाँ कहाँ,
नहीं मैं खाली पूछ रहा हूँ,
कुछ भी मुहूर्त पृथक्त्व का अर्थ है जो कुछ यथा योग्य कुछ मुहूर्तों में, अब वो मुहूर्त कहने से कुछ दिन भी हो सकते हैं उसके अंदर, पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त क्या क्या, हाँ ये भी सादी मिथ्या दृष्टि लेना, हाँ सादी लेना, क्योंकि नहीं तो वो सारी जो उपशम सम्यक तो की सभी कंडीशंस वहां होनी चाहिए, ये देशना लब्धि ये वो सब सब वो सब, हाँ और वैदिक सम्यक तो प्राप्त करने का वो छोटा काल है ना, पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में, ये तीन गति मार्गना का ही एक भेद, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना होता है, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है, यानी योग रुक जाए और फिर वापस हो जाए ये नहीं हो सकते, अधक कर्म का वो अध हुआ अध चाहिए, विसर्ग रह गया उसको, अध कर्म का अंतर कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है वह निरंतर है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, वो सब जीवों में घटित होता है एक समय वाली बात, और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 8-8 अंतर्मुहूर्त है,
असंगी और संगी के,
संगी और असंगी के, क्योंकि एक तिर्यंच या मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच वो क्यों डाला? एक तिर्यंच या मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त, वो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न हुआ?
पर्याप्त निकालना पड़ेगा ना?
नहीं 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 नहीं, एक को तिरिको व मनुष्यो व पंचेंद्रिय पज्जत्तो, नीचे क्या लिखा है? पंचेंद्रिय पज्जत्तो, पंचेंद्रिय पज्जत्ता, पंचेंद्रिय तिरिक अपज्जत्तेषु उवन्नो, यानी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव पंचेंद्रिय तीन च अपर्याप्तों में उत्पन्न हुआ, बस इतना चाहिए। देखो देखो, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त हमारी मार्गणा है, तो उसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में कौन उत्पन्न हो सकता है? वो एक इंद्रिय से वो कोई भी हो सकता है तिर्यंच वाला, तो तिर्यंच कह दिया। मनुष्य भी पर्याप्त अपर्याप्त कोई भी उत्पन्न हो सकता है, या पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त का वो भी उत्पन्न हो सकते है, तो भी मार्गणा तो बदल गई, ये कहना चाहते है इसमें। यानी सामान्य से कोई भी अन्य तिर्यंच ये पंचेंद्रिय पर्याप्त को छोड़कर, इतनी उनको बात बतानी है, कुछ नहीं। वो व न को व नहीं चाहिए, हाँ वो लब्धि पंचेंद्रिय अपर्याप्त को छोड़कर अन्य पर्याय वाला, वो व शब्द नहीं चाहिए वहां पर। यानी एक तिर्यंच या मनुष्य पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ है ना, वहां उत्पन्न होकर उसने प्रथम समय में, नहीं नहीं अथवा नहीं, वो निकाल ही देना है, कौमा भी नहीं, क्योंकि उत्पन्न होने वाले कौन है? मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त, हाँ जीव लिखो, वो के बदले जीव लिखो, हाँ वो समझ में आए, वो के बदले जीव करो, हाँ पर्याप्त जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त को में उत्पन्न हुए, वहां उत्पन्न होकर उसने प्रथम समय में उपपाद योग के द्वारा जिन परमाणुओं का ग्रहण किया, क्योंकि वो रुजुगति से आकर उसने ग्रहण किया, क्योंकि हमको वो तो बढ़ाना है निरंतर, उनके दूसरे समय में निर्जीर्ण हो जाने पर अधः कर्म का प्रारंभ होता है, और तीसरे समय से अंतर होता है। दूसरे समय में वो अधः कर्म रूप से रहा और तीसरे समय में अंतर हुआ, क्योंकि तीसरे समय में उनके औदयिक भाव का नाश हो जाता है। फिर 16 अंतर्मूर्त के अंतिम समय में, क्योंकि पंचेंद्रिय अपर्याप्त मार्गणा है, तो उसमें संगी पंचेंद्रिय के 8 भाव अपर्याप्तों के और असंगी अपर्याप्तों के 8 इतने हो सकते मैक्सिमम, तो संगी असंगी के 8-8 भाव, तो 16 अंतर्मूर्त के अंतिम समय में उन निर्जीर्ण परमाणुओं के ग्रहण होने पर अधः कर्म का अंतर प्राप्त होता है। ये ग्रहण किया तो भी उसको अधः कर्म कहेंगे, क्योंकि वो आगे चलकर निर्जीर्ण होने वाले हैं। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में अधः कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 16 अंतर्मूर्त प्रमाण प्राप्त होता है। कहीं पर घटित करना है तो 3 समय कम अपनी अपनी वो काय स्थिति जिसको कहीं उसको लेना, और ये मनुष्य तिर्यंचों में अधः कर्म होता है, देवनारकियों में नहीं होता। अब हम मनुष्य गति में देखेंगे। मनुष्यों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? तो कहते हैं नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। अधः कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, और उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्य प्रमाण है। जैसे हमने तिर्यंचों में देखा वैसे यहाँ लेना, पर मनुष्यों में वहाँ संगी और असंगी है ना, इसलिए डबल हो गए। और यहाँ तो मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय है। हाँ, तो हमने संगी पंचेंद्रिय के आठ 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 24 हुए, फिर अपर्याप्तों के आठ भाव करते और फिर 24। हाँ, तो 48 में से लास्ट वाला तीन पल्ले का, तो ये हो गया। यह अधकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल है। क्रियाकर्म का अंतरकाल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि वहां तो तीन समय लिए, यहाँ क्या करना है? वो तो 8 वर्ष के बाद वो समय तो प्राप्त करेगा, क्योंकि इसमें कोई सम्मोचन वगैरह तो होते नहीं, 8 वर्ष की लिमिट है। इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अंतरकाल 3 अंतर्मूर्त और 8 वर्ष कम 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ले प्रमाण है। अब ये 3 अंतर्मूर्त कैसे लेना?
2 पहले और 1 अंतर्मूर्त।
देखो, पहले तो गर्भ सहित 8 वर्ष तो ले लेना। फिर विशुद्धि का और सम्यक्त्व का
और 1 अंतर्मूर्त लास्ट पे, तो
और लास्ट में जब प्राप्त होते ही अंतर समाप्त हुआ, समझ में? 8 वर्ष हुए, वो 8 वर्ष में गर्भ, वो 8 सब आ गए। अभी उसमें पर्याप्त हुआ वगैरह सब कहने की जरूरत नहीं है। 8 वर्ष के बाद विशुद्धि का 1 अंतर्मूर्त और सम्यक्त्व का 1 अंतर्मूर्त। जब मिथ्यात्व में आया तब अंतर शुरू हुआ, और अंत में जाके उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया तो अंतर समाप्त हुआ। तो लास्ट में 1 अंतर्मूर्त, शुरुआत में 8 वर्ष और 2 अंतर्मूर्त। अभी तीसरी लाइन, इरियापत कर्म का अंतरकाल। अंतर कैसे समझेंगे हम? उपशम श्रेणी से उतरा, अंतर शुरू हुआ, वापस चढ़ा, अंतर समाप्त तो मिनिमम होगा और मैक्सिमम अर्ध पुद्गल होगा?
नहीं,
मनुष्य में रहना है। देखो क्या कहते हैं, अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, वो निरंतर है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में हमेशा जीव हो गए तो इरियापद चालू रहेगा। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। हमेशा तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं होता है, यह उल्टा है। जगन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक प्रमाण है।
ये 48 ले सकते हैं ना? 48 ले सकते हैं, नहीं सॉरी, 24 पूर्व कोटि और 48 ले सकते हैं ना?
देखो, 3 पल्ले में उसको उपशम श्रेणी चढ़ेगा क्या?
इसीलिए मैंने बोला 48 पूर्व कोटि ले सकते।
तो पूर्व कोटि पृथक पे इतना ही लिया ना, क्योंकि 24 कर्म की सत्ता वाला ये सादे मिथ्या दृष्टि लिया, एक देव या नार की समय दृष्टि जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, फिर 8 वर्ष के बाद विशुद्धि को प्राप्त होकर संयम को प्राप्त हुआ, फिर दर्शन मोहनी का उपशम करके प्रमत्त संयत हुआ। द्वितीय उपशम किया नहीं, फिर प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान में हजारों परिवर्तन करके, क्योंकि द्वितीय उपशम होने के बाद भी हजारों बार छठा सातवा होता है, अपूर्व उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक और सूक्ष्म उपशामक होकर उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त हुआ। इस प्रकार इरियापद का प्रारंभ दिखाई दिया, फिर यानी अंतर्मूर्त के बाद सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्ति बाधा सांप्राय अपूर्वकरण होकर तथा इरियापद कर्म का अंतर करके स्त्रीवेदी, वो स्त्री बराबर करो, स्त्री पुरुष वेदी और नपुंसक पुरस्व, नपुंसक वेदियों में 8-8 पूर्व कोटि काल तक जीवित रहकर फिर अपर्याप्तों के 8 अंतर्मूर्त बिताकर यह था न, कहां लिखा है सब जो मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति। हम तो कहते हैं हर मार विषय में आता है। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदियों में 8-8 पूर्व कोटि काल तक जीवित रहकर, जब जीवित में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहा, तब अपूर्व उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक और सूक्ष्म उपशामक होकर उपशांत कषाय हो गया। अब ये समझना है, ये बीच में इरियापद का अंतर किया और वो लगातार मनुष्यों में रहा, तो इसका अर्थ वो मिथ्यात्व में गया है। तो ये लगातार इतने उसके पूर्वकोटियां 48 पूर्वकोटि के अंत में जाके उसने फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, ये कौन सा सम्यक्त्व होगा?
ये तो
इतना टाइम लगता
है, पूर्वकोटि तो थक गए, तो वेदक हो सकता है ना?
वेदक ही होगा, वही तो मैंने कहा, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं?
या तो अंतर के लिए लास्ट समय में उसने अपन का संग प्राप्त किया,
क्या क्या क्या
अंतर के लिए? अच्छा, वापस उसको उत्कृष्ट अंतर देखना है तो लास्ट समय में उसका उत्कृष्ट कसाय में भेज दो और मरण करवा दो, तो अंतर खत्म हो जाएगा ना? अच्छा
हाँ, तो जीवित में जघन्य अंतर्मृत काल शेष रहा है ना, तब अपूर्व उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक और असूक्ष्म उपशामक होकर उपशांत कषाय हो गया, उसके प्रथम समय में इरियापद कर्म का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जाता है, फिर दूसरे समय में मरा और देव हो गया, क्योंकि हमको वो छोटा अंतर्मूर्त शेष रहने पर उसने उपशम श्रेणी चढ़ी थी। कितना काल? 8वें 9वें 10वें का और 11वें का खाली एक समय, इतना मिलकर जो अंतर्मूर्त होगा उतना शेष रहा तब उसने श्रेणी चढ़ी थी, और 11वें में प्राप्त होते ही उसका अंतर समाप्त हो गया। इस प्रकार समयाधिक 7 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्वकोटि काल प्रमाण इरियापद कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है।
ये समय अधिक क्यों लिखा है?
देखो, पहले में पहले क्या किया था उसने, पूरा श्रेणी चढ़ के उतरा था। जब मनुष्य में उत्पन्न हुआ था, फिर देखो पेज नंबर 138 सेंटर में जहाँ शुरू हुआ था ना, कि देव या नार की समय दृष्टि पूर्वकोटि की मनुष्य में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष के बाद विशुद्धि को प्राप्त होकर संयम को प्राप्त हुआ। पहला अंतर्मूर्त विशुद्धि, दूसरा संयम को, फिर दर्शन मुनि का उपशम किया, तीसरा अंतर्मूर्त, फिर प्रमत्त अप्रमत्त हजारों बार परितर्ण के, चौथा, फिर अपूर्व उपशामक, अनिवृत्ति उपशामक, सूक्ष्म उपशामक, फिर उपशांत कषाय वितराग हुआ। अभी उसके अंतर्मूर्त पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
पहले समय में,
और फिर नीचे पूरा आया, 11वें में से 10वें में आया तो अंतर चालू हो गया।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये उपशामक हुआ और दूसरे समय में उसका मरण करके अच्छा मार्ग पलट जाएगी? नहीं, मनुष्य की मार्ग पलट जाएगी,
मनुष्य में कायम रखना है उसको।
नहीं, 7 अंतर्मूर्त तो बराबर, पर ये लास्ट में जो ये समय अधिक लिखा है ना, कुछ समय अधिक 7 अंतर्मूर्त लिया ना,
समय अधिक 7 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम। देखो, वो तो बीच वाले अपर्याप्तों के 8 अंतर्मूर्त बढ़ाए थे कि नहीं? कुछ कम किए, कुछ बढ़ाए, इस तरह से वो समय अधिक 7 अंतर्मूर्त हो गए। हाँ, उपशांत कषाय का एक समय है, जब अंतर समाप्त हुआ 11वें में एक समय रहा, वो एक समय अधिक 7 अंतर्मूर्त लिए और 8 वर्ष कम, यानी 8 वर्ष में अधिक करके उसको कम करना। 48 पूर्वकोटि प्रमकाल प्रमाण इरियापद कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त होता है। अब आगे बढ़े, तप कर्म का अंतरकाल भी इसी प्रकार है, इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट अंतरकाल 2 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम, यानी 8 वर्ष में 2 अंतर्मूर्त बढ़ाने और वो कम करना, किसमें से 48 पूर्वकोटि काल प्रमाण है। यानी कैसे लेंगे हम, अब 8 वर्ष के बाद वो विशुद्ध होकर संयम प्राप्त किया उसने, तो तपकर्म हुआ, अंतर्मूर्त रहकर नीचे आ गया, और फिर इतने पूर्व कोटि प्रमाण रहकर अंतिम भव में फिर उसने संयम प्राप्त किया। तो प्राप्त किया तो संयम में अंतर्मूर्त रहकर फिर संयम के साथ मरा, ऐसा भी हम ले सकते हैं, देव में गया, यहाँ का अंतर्मूर्त और पहले वाला अंतर्मूर्त। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियमों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रम से अधकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 समय कम 23 पूर्व कोटि। देखो, पर्याप्त मनुष्य कहने से पर्याप्तों के 8-8 भव, जब हम पर्याप्त नहीं कहते तो अपर्याप्त करके फिर और 24 होते हैं, इसमें केवल 24 ही हो गए, तो 24 में से एक 3 पल्ल्य का रखना है, 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल्य प्रमाण, और 3 समय कम ये 7 पूर्व कोटि घालो डालो उसमें, 3 समय कम पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल्य नहीं है, 7 पूर्व कोटि
पर्याप्त है,
ऊपर है ना 7 पूर्व कोटि ही चौथी लाइन में। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नियम है ना, तो केवल मनुष्य पर्याप्त कहने से पर्याप्तों के 24 भव लेना है, और मनुष्य नहीं कहने से 8 में से 7 और 3 पल्ले लेना, तथा इनमें इरियापत कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से समयाधिक 7 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 24 पूर्व कोटि प्रमाण, और समयाधिक 7 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 8 पूर्व कोटि प्रमाण है। जैसे बात तो वही की वही है, पूर्व कोटि का प्रमाण अलग अलग है, तथा तपकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 2 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष न्यून 24 पूर्व कोटि प्रमाण, और 2 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 8 पूर्व कोटि प्रमाण है, तथा क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 2 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष न्यून 23 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल्य, क्योंकि वो पल्ले वालों में भी क्रियाकर्म होगा, तप कर्म नहीं होता है ना, इरियापत होता है, इसलिए वहां 3 पल्ले वाले को नहीं लिया था। और 2 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष न्यून 7 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल्य है, ये क्रियाकर्म के लिए मनुष्य का लिया और पर्याप्त मनुष्यों का लिया। अब मनुष्य अपर्याप्त, हाँ, 8 भव होते हैं, उसमें से 8वां पल्ल्य का 3 पल्ल्य का लेना। हाँ, लगातार 8 हो सकते हैं, भोग भूमि का वहाँ तो द्रव्य और भाव दोनों स्त्री होगी, ये मनुष्य नहीं कहने से वो द्रव्य भाव का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इरियापद घटित करने के लिए तो और तप कर्म तो भाव ही लेना है, तो पहला और अंतिम तो भाव ही लेना है,
तो वो 3 पल्ल्य में तो भाव से भी मनुष्य नहीं होगी,
और 3 पल्ल्य में तो द्रव्य और भाव एक ही होता है,
एक ही होता है,
हाँ स्त्री होगी वहाँ पर, द्रव्य से स्त्री होगी। मनुष्य पर्याप्तकों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। ये तो मार्गणा का ही अंतर बता दिया, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा मार्गणा में अंतर पड़ता है, पर एक जीव उसमें जन्मा है तो उसके प्रयोग कर्म और समवदान तो हो गए ही होंगे। अधकर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल, तीन समय कम आठ अंतर मुहूर्तें, क्योंकि लगातार आठ भव होते हैं इसलिए। अब देवगति में, देवगति में देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? कहते नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, क्योंकि हमेशा ही समय दृष्टि जीव रहेंगे, निरंतर है, तिरंतर हुआ, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, यानी सम्यक्त से छूटा और फिर सम्यक्त प्राप्त किया, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर है, क्योंकि जो वहां मिथ्या तो में जाना चाहिए, ऊपर के देव तो सारे समय दृष्टि है, क्योंकि एक संयत जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरते हुए असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में द्रव्य संयम के साथ उपशम सम्यक्त के दीर्घ काल तक उसका पालन कर मरा। तो क्या कहना चाहते हैं? यानी द्वितीय उपशम वाला जीव जो लिया है, हमने देवों में अंतर ले लेना है ना, ऊपरी मैंने अंतिम अंतिम ग्रेवेक में जन्मने वाला जीव लिया, यहाँ द्वितीय उपशम में मरा, कब? चौथे गुणस्थान में। द्रव्य संयम तो था ना, संयम ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो द्वितीय उपशम में से भी चौथे गुणस्थान में आया है, तो जो मुनिराजों का द्रव्य संयम तो चल ही रहा है। तो वहां अंतिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर क्रिया कर्म का प्रारंभ किया, ये देव में क्रिया कर्म शुरू हुआ, क्योंकि द्वितीय उपशम के साथ जन्मा है तो वहां क्रिया कर्म है, और शरीर पर्याप्ति के पहले पहले वो उसको साधन में भेजेंगे तो क्रिया कर्म का अंतर चालू हो जाएगा। फिर उपशम सम्यक्त्व के कोने के काल में छह अवली काल शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर उसका अंतर किया, यानी देव के अपर्याप्त अवस्था में उसने सासादन को प्राप्त किया। मैंने पहले कुछ समयों तक वो तो द्वितीय उपशम रहा तो क्रिया कर्म था, फिर अंतर शुरू हुआ, तदनंतर 31 सागर में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। इतने लंबे काल पर फिर उसको उपशम ही करना है। इस प्रकार क्रिया कर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल प्राप्त हो जाता है, और फिर सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर मरा और मनुष्य हो गया, क्योंकि वो अर्लीएस्ट उसको देव में से नीचे लाना है, उसको लास्ट में छोटा अंतर्मूर्त रखना, इसलिए पहले द्वितीय उपशम के साथ उत्पन्न हुआ था, सासादन में जाते ही छावली पहले ही हो गया, तो क्रियाकर्म का अंतर शुरू हुआ, और लास्ट का उपशम सम्यक्त्व का काल बाकी रहकर वो सारा वो तो मिथ्या तो मेरा है इतना, तो उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते ही क्रियाकर्म शुरू हुआ तो अंतर समाप्त हुआ, फिर जल्दी लाना है मनुष्यों में, इसलिए तो सासादन में लाकर मरण होकर कहां पर वेदक ही रहेगा, क्योंकि कितना काल है? पूर्व कोटि पृथक, तो असंख्यात वर्षों तक तीन की सत्ता बनी रहती है, और यहाँ तो यानी पल्ले के असंख्यात वे भाग में उद्वेलना समाप्त होती है। अब यहाँ तो 31 सागर है, अरे पल्ले भी होता तो भी समझ में आए ना, तो अभी उसको जब दोबारा प्राप्त करना है तो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो जाता है वो, तो उसका उपशम ही समय तो प्राप्त हुआ। संयमी क्यों नहीं लिया? संयमी मरकर असंयत इसलिए लिया कि वो असंयत में आने तक उसका जो द्वितीय उपशम का और काल बीत गया है। देखो देखो, पहले में पहले सातवें तक तो नियम से आएगा, फिर सातवें से छठा आएगा, छठा सातवां भी होगा,
वो तो हजारों बार होगा,
और फिर वो नीचे पांचवें में भी आ जाता है, चौथे में भी आ सकता है, तो चौथे में आकर मरा, यानी अभी द्वितीय उपशम का कम काल बाकी है उसका, फिर भी छह अवली बाकी रखा।
द्वितीय उपशम में भी छह अवली का रूल
है ना, क्यों नहीं, रूल तो सब जगह एक ही होता है।
नहीं, मेरे सोचा प्रथम उपशम में छह अवली का,
नहीं यानी वो कितना वहाँ देव में बहुत कम काल तक वो द्वितीय ऑप्शन में रहा, फिर साधन में आ गया। ये हो गया क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतर। इस प्रकार क्रियाकर्म का दो अंतर्मूर्त कम 31 सागर प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल पाया जाता है। फिर भी वो उपशम में रहने का भी पहला अंतर्मूर्त ही लिया उसने, और अंत में उपशम में अंतर्मूर्त लिया, यानी छह अवली कम करने पर भी उपशम में रहने का काल उन्होंने अंतर्मूर्त गिना है, दो चार समय नहीं लिया।
पहले वाला नहीं है, वो पर्याप्ति के पहले ही वाला लेगा ना।
बिल्कुल, पर्याप्त होने के पहले वो तो द्वितीय ऑप्शन में से या तो वेदक हो जाता है या तो फिर साधन में आ जाता है। हमको क्रियाकर्म का अंतर करना था, इसलिए वेदक में नहीं ले जाते हुए साधन में लाया। भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिषी देवों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। इसी प्रकार सब देवों के कहना चाहिए, यानी ये दो कर्म तो सब देवों के तो निरंतर हो गए। क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, यानी वहां हमेशा ही समय दृष्टि देव पाए जाएंगे, वह निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त, यानी मिथ्यात्व में गया और फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त किया। और उत्कृष्ट अंतरकाल क्रम से 5 अंतर्मूर्त कम 1.5 सागर, ये भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु। पहले 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम किया, फिर विशुद्ध हुआ, सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। अभी सादी मिथ्या दृष्टि लेना है वहां पर, यानी 4 अंतर्मूर्त गए ना, सम्यक्त्व से जब छूटा तब उसका अंतर चालू हो गया। अंत में जाके 1 अंतर्मूर्त बाकी रहकर उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो ये 5 अंतर्मूर्त कम 1.5 सागर ये भवनवासी के लिए, 5 अंतर्मूर्त कम साधिक एक पल्य व्यंतर के लिए। पहला है वो भवनवासी के लिए, और 5 अंतर्मूर्त कम साधिक एक पल्य, अच्छा उत्कृष्ट आयु लेना है, व्यंतर और ज्योतिषी दोनों, व्यंतर और ज्योतिषी दोनों ही साधिक एक पल्य।
नहीं
वो मिनिमम आयु में डिफरेंस है, मिनिमम आयु 10,000 और पल्ले का 8वां भाग, और मैक्सिमम आयु 1.5 सागर साधिक पल्य और साधिक पल्य, व्यंतर भी और ज्योतिषी भी, दोनों के लिए साधिक पल्य अलग अलग लिखा है ना, दो बार लिखा है। नहीं हाँ, वो भवनवासी कम साधिक एक पल्ले व्यंतर और फिर व्यंतर साधिक एक पल्ले ज्योतिषी। पहले भी आई थी ना ये बात, किसमें आई थी, काल में आई थी, देखो निकालो, काल में ही आई, देवगति में ले लेना, देवगति में देवों के देखो पेज नंबर 114 पर जघन्य काल था, देवगति में निकालना। देवगति में उसका काल देख रहे हैं ना, अभी नीचे का पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 छठी लाइन ऊपर से, जघन्य काल क्रम से 10,000 वर्ष भवनवासी में, ये मिनिमम है 10,000 वर्ष व्यंतर में, पल्ले का 8वां भाग ज्योतिषी में, ये तो जघन्य की बात है। अब उत्कृष्ट की हमको लेना है
दूसरी लाइन में,
तो उसके नीचे चले जाना है। हाँ देखो 115 पेज पर उत्कृष्ट काल, यानी पहली लाइन लास्ट में शुरू होता है उत्कृष्ट काल। डेढ़ सागर भवनवासी, सादिक एक पल्ले व्यंतर और सादिक एक पल्ले ज्योतिषी आए थे ना वहां पर, ये जगन्य और उत्कृष्ट। वहां जो काल था वो यहाँ कुछ कम करके अंतर कहना, ये शुरुआत में एक बार प्राप्त किया फिर लास्ट में प्राप्त किया। और उसमें से 5 अंतर्मूर्त कम कर दिए, शुरुआत के 4 और लास्ट में 1। आगे बढ़े ना, अभी सौधर्म कल्प से लेकर शतार सहस्रार कल्प तक के देवों में क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है, तो नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल का विचार सामान्य देवों के समान है, समाना हुआ समान है। क्रियाकर्म की बात, क्योंकि वो प्रयोग और समवदान का अंतर होता ही नहीं ना, एक जीव के होता ना अनेक जीवों के। तो क्रियाकर्म तीसरा एक ही बचा, उसी की बात करेंगे। तो एक जीव की अपेक्षा पेज नंबर 141 जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो सम्य दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अतिशीघ्र सम्यक्त को प्राप्त होता है उसके यह अंतरकाल पाया जाता है। क्रियाकर्म का उत्कृष्ट अंतरकाल सर्वत्र आदि और अंत के 2 अंतर्मूर्त कम तथा अंतर्मूर्त कम, आधा सागर अधिक क्रम से, क्या कहा ये 2 अंतर्मूर्त कम और अंतर्मूर्त कम ऐसा क्यों लिखा अश्विन भाई?
आधा सागर में अंतर्मूर्त कम होता है ना।
हाँ, घातायुष्क की जो आयु है वो वहां की जो आयु थी उसमें आधा सागर अंतर्मूर्त कम आधा सागर बढ़ता है, यानी 2 सागर जहाँ है वहां पर अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर होगा, और वो बाकी 2 पहले 2 अंतर्मूर्त तो पहला और लास्ट में वो कम करना ही करना है। यानी वहां जो सौधर्म से लेकर जो है, पहले हमने भवनवासी में 5 अंतर्मूर्त कम किए थे। तो लक्ष्मी मेरा प्रश्न है आपसे, यहाँ 2 ही अंतर्मूर्त कम क्यों किए? हाँ हाँ, सम्यक तो के साथ जन्मा हुआ जीव लेना और वो मिथ्या तो में गया, ऐसा जीव लेना वहां पर। हाँ, इसलिए 2 अंतर्मूर्त कम किए, किसमें से? उत्कृष्ट आयु में से। तो उत्कृष्ट आयु कितनी कितनी ली? तो अंतर्मूर्त कम आधा सागर अधिक क्रम से 2 सागर पहले दूसरे स्वर्ग के लिए, यानी अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर वहां की उत्कृष्ट आयु। फिर 7 सागर, यानी 7 में अंतर्मूर्त कम करके आधा मिलाना, यानी अंतर्मूर्त कम 7.5 सागर। पर वो तो काल बढ़ेगा ना, उसको अंतर कम हो जाएगा, उसको अंतर हमको मैक्सिमम रखना है, तो सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न करना है। सम्यक्त्व के साथ करो या
सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न करने से ही काल कम हो जाएगा।
हाँ वही तो,
काल बढ़ेगा
ना, अंतर बढ़ेगा, अंतर बढ़ेगा, अर्लीस्ट उसका मिथ्यात्व मिलाना। मैं वो सम्यक्त के साथ जन्म और अंतर मिथ्यात्व में गया। अरे आहा, मैंने क्या प्राप्त किया, ऐसा कुछ होता होगा? लोग पूछते हैं मिथ्यात्व में क्यों जाते हैं इतना सम्यक्त, इतना हम सम्यक्त की इतनी जो वखान करते हैं, जिसको कहीं महिमा गाते हैं, और इतना पुरुषार्थ करके सम्यक्त हो भी गया तो भी मिथ्यात्व में क्यों जाता है? तो क्रम से 2, 7, 10, 14, 16 और 18 सागर प्रमाण है, क्योंकि घातायुष्क जो होते हैं वो 12वें स्वर्ग तक सहस्रार तक होते हैं। आनत प्राणत कल्प से लेकर उपरिम उपरिम ग्रेविक तक के देवों में क्रियाकर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल सर्वत्र आदि और अंत के दो अंतर्मूर्त कम क्रम से 20 21 के लिए 13वें 14वें के लिए 22 15 16 के लिए फिर ग्रहवेक में 23 से लेकर 31 तक 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 सागर प्रमाण है। यहाँ इतना विशेष कहना चाहिए कि उपशम श्रेणी पर चढ़कर फिर उतरकर असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में द्रव्य संयत होकर और मरकर जो अपने अपने इच्छित विमान में उत्पन्न हुआ है उसके क्रियाकर्म की आदि होती है, यानी उन सबको उपशम सम्यक्त्व में मरकर वहां भेजा है क्योंकि उसके साथ वो अर्लीएस्ट संसाधन में आ सके इस तरह से। और अपनी अपनी आयु में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है और इस तरह से अंतरकाल निकल आता है, यानी मरते समय भी वो साधन में आकर मरकर अन्यत्र चला जाएगा। अगर हाँ, आपका कहना है कि द्वितीय उपशम वाला साधन में नहीं आता, इसे भी एक मान्यता है। और प्रथम उपशम वाला तो मरता नहीं है, तो प्रथम उपशम के साथ तो कोई उत्पन्न होगा नहीं, पर साधन में मर सकता है। पर साधन में मरकर भेजेंगे तो क्रियाकर्म नहीं ले सकते, इसलिए वहां तो द्वितीय उपशम के साथ वाला ही जीव लिया है और यहाँ सर्वत्र उसका स्वीकार है। फिर उपशम सम्यक्त्व के काल में छह अवली काल के शेष रहने पर साधन गुणस्थान को प्राप्त होकर उसका अंतर करता है, यानी वो तो पहले समय में मरकर यहाँ मनुष्य में आ जाएगा। और अपनी अपनी आयु में सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल के शेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। ये फिर बाद में क्यों लिखा? और इस तरह अंतरकाल निकल आता है। फिर साधन गुणस्थान को प्राप्त होकर और मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ ऐसा कहना चाहिए। तीरियंचो में क्यों नहीं कहा?
ऊपर से दिए ना, आनंद प्राण से ना, वो तीरियंच में नहीं जाते।
आनंद प्राण की कहाँ बात है? पूरे दो सागर से लिए सबको?
नहीं नहीं, ये आनंद प्राण की बात हो गई।
कहाँ?
ये 20, 22, 23, 24, 25 सागर की बात है ना, आनंद प्राणत की बात की ना हमने।
एक एक मिनट, आनंद प्राणत कल्प से लेकर ऊपरी। अच्छा अच्छा, ऊपरी की बात है। और ऐसे भी बाकी भी जो साधन के पहले समय में मरेगा वो तो मनुष्य में आएगा, और लेट मरेगा वो तिरियंश में आ सकता है। वैसे तो एक इंद्रिय में भी जा सकता है, नहीं जा सकता वो बात नहीं है। नीचे के देव जो है, नीचे के देव वो तो लेट मरेंगे ना वहां पर, इसलिए उनके मारणांतिक में साधन स्वीकार है। अब यहाँ बढ़ते आगे,
यहाँ पे तो वैकेंसी भी ले ही नहीं सकते।
यहाँ तो यहाँ की बात नहीं है,
ऐसे जनरल बात,
जनरल बात है। इस प्रकार नीचे से तीसरी लाइन, ये दो अंतर्मूर्त कम अपनी अपनी कही गई सागरों प्रमाण उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। अब ऊपर के जो है उसमें तो क्रियाकर्म का अंतर ही नहीं होगा, है ना? अर्ची अर्ची माली ने वज्र वैरोचन सोम सोमरुचि अंक स्फटिक आदित्य, ये तो हो गए नौ अनुदेश। फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये हो गए अनुत्तर। विमानवासी देवों में प्रयोग कर्म समवदान कर्म और क्रिया कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, वह निरंतर है। अब गति मार्गणा हमारी हो गई, अब इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? तो नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये बात यहाँ घटित की है, एक इंद्रियों की अपेक्षा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बताए। बादर एक इंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, निरंतर है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, सर्वत्र जघन्य एक समय लिया उन्होंने, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, जो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समयों के बराबर है। देखो ये उसकी उसकी अपनी अपनी काय स्थिति लेना है। बादर एक इंद्रिय इतना ही कह दिया, जो अंगुल का असंख्यात भाग, बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अधः कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय। अब बादर एक इंद्रिय और पर्याप्त की बात चल रही है। उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम संख्यात हजार वर्ष है, वो स के ऊपर बिंदी लगा लो। अब बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त कहोगे, प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं होगा, अधः कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त, क्योंकि वो लगातार अपर्याप्तों में रहने का काल उतना ही होगा। सूक्ष्म एक इंद्रियों में, जब सूक्ष्म एक इंद्रिय जनरल करेंगे तो उनकी काय स्थिति कितनी है, सूक्ष्म एक इंद्रियों में बोलो मैक्सिमम। हाँ अश्विन भाई,
नहीं सूक्ष्म की असंख्यात लोग,
असंख्यात लोग पक्का नहीं मालूम,
नहीं
सूक्ष्म एक इंद्रियों में प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अधः कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम असंख्यात लोक। नहीं नहीं नहीं, तीन समय इसलिए लिए उन्होंने, वैसे तो रुजुगति से पहले समय में ग्रहण किया, दूसरे समय में वो निर्जरित किया, फिर अंतर शुरू हुआ, तो दो समय यहाँ गए, और लास्ट में अंतिम समय में ग्रहण किया तो वो समय छोड़ना, उसके पूर्व तक अंदर चालू रहेगा, इसलिए तीन समय कम लिया, तीन समय कम असंख्यात लोग। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्तकों के, अब पर्याप्तकों में लगातार पर्याप्त पर्याप्त अंतर्मूत रहेगा, लगातार अपर्याप्त भी अंतर्मूत ही रहेगा। प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का नाना जीवों और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अधक कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की वो जो दिख रहा है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है, और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम अंतर्मूर्त है। ये हर एक की अपनी अपनी काय स्थिति देखना है, इसी प्रकार सूक्ष्म एक केंद्रीय अपर्याप्तकों के भी जानना चाहिए, उसके भी अपने जो लगातार उसके भाव होंगे वो अंतर्मूर्त ही होगा। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों के तथा उन्हीं के पर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, अधः कर्म का अंतरकाल कितना है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय। अब द्विंद्रिय के अपने, तीन्द्रिय के अपने कितनी स्थिति होगी मैक्सिमम? संख्यात हजार वर्ष है। तो उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम संख्यात हजार वर्ष है और उनके अपर्याप्त में अंतर्मूर्त कहेंगे। द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त जीवों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? तो कहते नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अधः कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम, क्रम से 80 यानी द्विंद्रिय के 80 भव होते हैं एक अंतर्मूर्त में, 60, 40 और 24 अंतर्मूर्त हैं पंचेंद्रियों में। पंचेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है?
ये अपर्याप्त में पंचेंद्रियों में 24 अंतर्मूर्त कैसे लिए?
आठ 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 होते हैं ना पंचेंद्रियों के। क्यों? पंचेंद्रिय अपर्याप्त की बात है।
हाँ, तो संज्ञा अपर्याप्त और असंज्ञा अपर्याप्त
और मनुष्य
के इंद्रिय मार्गणा है ना,
तो इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय अपर्याप्त आए कि नहीं आए?
हाँ, तो पंचेंद्रिय अपर्याप्त के पंचेंद्रिय संज्ञा और असंज्ञा दो ही हो जाएगा ना।
पंचेंद्रियों के भाव कितने हो गए? आठ 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 24 हो गए। 24 भव होते हैं पंचेंद्रियों के, उसमें आठ आठ तो संगी असंगी तीर्यंचों के और फिर मनुष्यों के आठ, वो सब पंचेंद्रिय है कि नहीं है? अंतर्मूर्त गिनना है, परंतु हम इतने भव होते उस अपेक्षा से अंतर्मूर्त गिनना, उतने अंतर्मूर्त गिनना, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम 66,336 भव होते फिर भी सब मिलकर अंतर्मूर्त है और एक एक भव भी अंतर्मूर्त का होगा। पंचेंद्रियों के, अभी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के बताए 24 मूर्त। पंचेंद्रिय कहने से पंचेंद्रियों के प्रयोग कर्म और समवदान कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। अध कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अंतरकाल तीन समय कम, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर है। ये पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर पंचेंद्रियों में रहने का काल है। ईर्ष्यापथ कर्म का अंतरकाल कितना है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल नहीं, क्योंकि 13वें में हमेशा जीव हो गए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त दो बार श्रेणी चढ़ने में। उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर, वही लिया क्योंकि 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक एकेंद्रिय जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। एकेंद्रिय को लिया क्योंकि वो पूरी लगातार 1000 सागर तक रखना है ना।
अच्छा,
28 की सत्ता वाला फिर भी एकेंद्रियों के ज्यादा भाव करके आए हैं, जब तक उद्वेलना नहीं हुई ऐसा लिया है। गर्भ से लेकर 8 वर्ष का होने पर वेदक सम्यक्त्व और संयम को एक साथ प्राप्त हुआ। अनंतर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके तथा दर्शन मोहिनी को उपशमा कर फिर प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान के हजारों परावर्तन करके अपूर्व उपशमक, अनिवृत्ति उपशमक, सूक्ष्म उपशमक और उपशांत कषाय हुआ। यह ईर्ष्यापद कर्म का प्रारंभ दिखाई दिया। फिर सूक्ष्म सांप्राय होकर उसका अंतर किया यानी उतरने लगा। ये बहुत बड़ा है कि आगे तक देखो, हम ईर्ष्यापद का अंतरकाल कल ही देखेंगे सेकंड लाइन से। हाँ, एकेंद्रिय में जाकर पल्ले का संख्या तो अभाग नहीं बिताया है, इतना है, इतना है लेना।
दूसरी लाइन से ले लेंगे,
सेकंड लाइन से एरिया पथ की बात फिर कल देखेंगे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा है बहुत, फास्ट पढ़ने से भी कुछ फायदा नहीं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कानो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।